सीमा ने अपनी बेटी प्रियंका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, देखा तूने किस तरह से इस लड़की ने कुछ ही दिनों में उन लोगों पर जादू चलाया। वो लोग उसे बुलाने के लिए यहाँ तक आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पति इसे कुछ खास पसंद नहीं करता, इसीलिए वो इससे मिलने तक नहीं आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसे अलग भी कर देगा। एक तेरी ही बातें मारी गई थी कि तू इतने बड़े घर का रिश्ता छोड़कर भाग गई। अगर तुझे कोई और पसंद था तो क्या तू हमें पहले नहीं बता सकती थी? ये बोलते हुए सीमा जी अपनी बेटी को डांटने लगी, लेकिन जब उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि उसने किसी फटीचर को नहीं बल्कि शहर के एक काफी अमीर आदमी को पसंद किया है, तो सीमा जी संतुष्ट हुईं और अपनी बेटी को शादी से भगाने के लिए माफ भी कर दिया। और वैसे भी वो वास्तव में अपनी बेटी की शादी वहां करवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अरमान के एरोगेंट बिहेवियर के बारे में पूरा शहर जानता था। हर रोज अरमान के एरोगेंट बिहेवियर की चर्चा अखबारों में आती रहती थी, लेकिन आज तक अरमान सिंघानिया को ढंग से किसी ने नहीं देखा था, केवल कुछ एम्प्लॉयज ने ही। और उसकी शादी में भी अरमान की तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। शादी में भी उन्होंने हल्की फुल्की झलक ही अरमान की देखी थी, क्योंकि प्रियंका के भागने पर वो उसे ढूंढने में लगे हुए थे। प्रियंका उत्साह से बोली, अरे मॉम ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप आज रात को पार्टी में क्या पहनेंगे? इन अमीर लोगों की पार्टियाँ बड़ी शानदार होती हैं। आप देखना मैं सबसे खूबसूरत दिखूंगी, ऐसा बोलकर प्रियंका इतराने लगी और जल्दी ही पार्टी के तैयार होने के लिए वो माँ बेटी ब्यूटी पार्लर की ओर रवाना हो गईं। वहीं आस्था उदास मुंह बनाकर अपनी नानी माँ से बोली, नानी माँ ध्रुव जी हमें पार्टी के लिए इनवाइट करके तो चले गए, लेकिन हम पार्टी में क्या पहनेंगे? हमारे पास तो केवल दो ही जोड़ी कपड़े हैं और गांव से तो हम अपने लिए ज्यादा कपड़े भी लेकर नहीं आए हैं। तब नानी माँ ने मुस्कुराते हुए आस्था की ओर देखकर कहा, तू परेशान मत हो, आ मेरे साथ। ऐसा कहकर नानी माँ जल्दी ही अपने पुराने संदूक के पास आस्था को ले गईं और आस्था से प्यार भरी आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, इसमें तेरे लिए कपड़े हैं, आज तुझे हम अपने हाथों से तैयार करेंगे। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव जल्दी ही सिंघानिया मेंशन पहुंच गए थे। सिंघानिया मेंशन में पहले से ही आकाश, टाइगर और अरमान मौजूद थे। सुमित को भी उन्होंने फोन कर दिया था और उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, हम दोनों आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। आज शाम को हमने पार्टी रखी है तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस पार्टी में आए। जैसे ही आहान और ध्रुव ने सिंघानिया मेंशन में जाकर पार्टी के बारे में बताया, सभी असमंजस से उन्हें देखने लगे जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हों, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये दोनों कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। तभी दादाजी मायूस होते हुए उठकर वहां से जाने लगे, लेकिन आहान ने तुरंत जाकर दादाजी को पीछे से गले लगा लिया और उनसे कहा, दादाजी प्लीज आप भी पार्टी में जरूर आइए, देखिए ना घर में कैसा माहौल हो गया है, सब कुछ कितना सोना सोना सा लग रहा है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और शायद आप लोग भूल रहे हैं आज ध्रुव का जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उसे विश तक नहीं किया है। तब दादाजी कुछ सोचते हुए ध्रुव की ओर देखकर बोले, लेकिन तेरा जन्मदिन तो 18 अगस्त में आता है ना, तो तू आज कौन सा जन्मदिन मना रहा है? जैसे ही दादाजी ने ये कहा, ध्रुव और आहान दोनों सकपका गए। अब वो उन्हें क्या बताएं कि उन्होंने ये अचानक झूठे बर्थडे का प्लान क्यों बनाया है। लेकिन ध्रुव बातें बदलते हुए बोला, दादाजी प्लीज मेरा बर्थडे आज का ही है और जो बर्थडे मेरा अगस्त में आता है वो सिर्फ कागजों वाला दिखावे का बर्थडे है, असली बर्थडे तो मेरा आज ही है और आप जानते हैं मैंने आज तक सिर्फ कागजों वाला बर्थडे ही मनाया है, लेकिन जो मेरा असली बर्थडे है वो मैंने कभी नहीं मनाया है, लेकिन आज मैं अपना असली बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। दोस्तों सच बताना कितने लोगों का असली बर्थडे डॉक्यूमेंट में रजिस्टर नहीं है? वे सभी ध्रुव की बात सुनकर चुप हो गए थे। ध्रुव ने एक ही सांस में ये सारी बातें बोली थी, उसके बाद उसने गहरी सांस ली, ऐसा लगने लगा था मानो कि ध्रुव ने कोई जंग जीत ली हो। तभी दादाजी मुस्कुराते हुए उसके पास आए, उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर बोले, हैप्पी बर्थडे बेटा, लेकिन माफ करना हम तेरी पार्टी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारा बिल ही नहीं कर रहा कि हम किसी भी पार्टी वगैरह को अटेंड करें। दादाजी की बात सुनकर ध्रुव इमोशनल होकर बोला, दादाजी प्लीज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस दुनिया में अगर मेरा अपना यहाँ कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही हैं, अगर आप लोग मेरी पार्टी में नहीं आएंगे तो मैं भी पार्टी नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर ध्रुव एक तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। वहीं आहान मन ही मन में ध्रुव की एक्टिंग की दाद दे रहा था, आंखों ही आंखों में इशारों से उसे कह रहा था, वाकई तू तो मुझसे भी ज्यादा ड्रामेबाज निकला, कौन कहेगा तू एक फेमस हार्ट सर्जन है जबकि तेरी हरकतें तो अभी तक बच्चों जैसी ही हैं। फिर दादाजी ध्रुव की ओर देखकर अपनी सहमति देते हुए बोले, ठीक है बेटा अगर हमारे आने से तुझे खुशी मिलेगी तो ठीक है, हम जरूर आएंगे शाम को तेरी पार्टी में, लेकिन तू पार्टी कहाँ कर रहा है? ध्रुव आहान की ओर देखने लगा और आहान तुरंत बोला, और कहाँ दादाजी, सबसे खूबसूरत जगह तो एक ही है, वो है आकाश भाई का विला, हम अपनी पार्टी आकाश भाई के विला में करेंगे, ऑलरेडी मैंने पार्टी की अरेंजमेंट करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, वो शाम तक सारी तैयारी भी कर देंगे। जैसे ही आहान ने ये कहा, आकाश उन्हें घूर कर देखने लगा और मन ही मन में बोला, इन्हें पार्टी मेरे विला में करनी है और मुझे ही पता नहीं है कि मेरे विला में आज शाम पार्टी है, कमाल है ये दोनों, पता नहीं अब कौन सा खुराफाती आइडिया चल रहा है इन दोनों दिमाग में। लेकिन वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश कभी भी उन्हें पार्टी करने के लिए मना नहीं करेगा, इसीलिए आकाश ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा और चुप ही रहा। और तब ध्रुव ने आहान को इशारा किया। आहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और एक एक करके सबके पास जाने लगा और आकाश के पास जाकर नजरें चुराते हुए बोला, आकाश भाई, आपके विला में पार्टी है तो ऑब्वियसली आप तो आएंगे ना। जैसे ही आहान ने ये कहा, आकाश केवल घूर कर देखने लगा। आहान जल्दी से सुमित के पास गया, खुश होते हुए बोला, सुमित भाई, आप भी आएंगे ना पार्टी में। तब सुमित ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर आहान सीधा अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया। हालांकि अरमान से गुस्सा था, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने अपना गुस्सा साइड में रखकर आस्था और अरमान को मिलवाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की थी। इसीलिए उसने अरमान की ओर बिना देखे कहा, भाई क्या आप ही आएंगे पार्टी में। जैसे ही आहान ने थोड़ा सा सर झुकाकर धीमे स्वर में अरमान से ये पूछा, अरमान ने बिना किसी इमोशन के कहा, नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं आऊंगा, तुम लोगों को जो पार्टी करनी है करो। ऐसा बोलकर अरमान अपने कमरे की ओर जाने लगा। ध्रुव टाइगर की ओर देखकर बोला, टाइगर भाई, आप तो आएंगे ना पार्टी में। तब टाइगर ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, अगर किंग नहीं आएंगे तो मैं वहां आकर क्या करूंगा। ऐसा बोलकर टाइगर एक कॉल करने के लिए बाहर चला गया और अरमान अब सीढ़ियों से चलते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी उसे ध्रुव की आवाज आई, दादाजी, एक और बात तो हम आपको बताना ही भूल गए, पार्टी में हमने आस्था भाभी को भी इनवाइट किया है, भाभी भी आज शाम पार्टी में आएंगी। जैसे ही दादाजी ने ये सुना वो मुस्कुराने लगे। वहीं अरमान, जो कि अपने कदम बढ़ाकर ऊपर अपने कमरे की ओर जा रहा था, जैसे ही उसके कानों में ध्रुव की आवाज सुनाई दी तो उसके कदम वहीं रुक गए, जिसे आहान और ध्रुव ने देख लिया था। लेकिन अरमान को नजरअंदाज करते हुए वो दादाजी को मुस्कुराते हुए बताने लगे, दादाजी, भाभी को हमने खुद पर्सनली जाकर इन्वाइट किया है, भाभी भी पार्टी में जरूर आएंगी।
अब दादाजी भी मुस्कुराने लगे खुश होते हुए। उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश मेरे बच्चों, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे भी जब से आस्था बिटिया गई है, मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। हालांकि उसे गए 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है जैसे बरसों से बिटिया यहां से चली गई है। ऐसा बोलकर दादाजी उदास से हो गए। लेकिन अरमान कुछ पल रुकने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया। उसके कानों में ध्रुव की आवाजें ही गूंज रही थीं कि आस्था भाभी पार्टी में आने वाली है। जल्दी ही वो सब लोग वहां से चले गए। आकाश ने सुमित को भी बता दिया था कि किस तरह से एक शार्प शूटर को अरमान को मारने के लिए सुपारी दी गई है, इसलिए अरमान के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और टाइगर के कानों में भी ये बात जा चुकी थी, इसलिए वो लोग टाइगर की तरफ से बेफिक्र थे, क्योंकि टाइगर तो साय की तरह अरमान के साथ ही रहता था। फिर ध्रुव, आहान जल्दी से आकाश के खूबसूरत विला में पहुंच गए थे। ध्रुव और आहान ने रश्मि को जानबूझकर इस बात के बारे में नहीं बताया था कि वो पार्टी कहीं और नहीं बल्कि आकाश के विला में कर रहे हैं। रश्मि ने आज तक कभी भी आकाश का विला नहीं देखा था। वहीं रश्मि ने आस्था से कह दिया था कि पार्टी में वो उसके साथ ही चलेगी, तब तक वो तैयार रहे और ड्राइवर के साथ वो उसे पिक कर लेगी। तो कहीं ना कहीं सब लोग पार्टी की तैयारी करने लगे थे और अच्छे से तैयार होने लगे थे। वहीं अरमान सिंघानिया बेचैनी से अपने कमरे में टहलने लगा था और अंत में उसने फैसला ले लिया था कि वो भी अब इस पार्टी में जाएगा। आकाश का खूबसूरत विला, जिसे ओपन करते ही ठंडी ठंडी हवाएं फूलों में से आती खुशबू सीधा शरीर को लगा करती थी और फूलों की महकी सी खुशबू चारों तरफ बस जाया करती थी। आकाश का विला कम, फूलों का बाग ज्यादा लगा करता था। आते ही खूबसूरत फूलों के बाग में से होते हुए आकाश का खूबसूरत बड़ा ही प्यारा बड़ा सा हॉल था। पूरे हॉल में बर्थडे स्टिकर वगैरह लगाए गए थे, बहुत ही खूबसूरत सा अरेंजमेंट किया गया था। इतना ही नहीं, डांस फ्लोर के लिए अलग से एक डांस स्टेज तैयार की गई थी। साथ ही साथ एक छोटा सा ड्रिंक बार लगाया गया था और चारों तरफ बड़े ही स्वादिष्ट पकवान रखे गए थे। ये एक तरह से बड़ी ही शानदार और बहुत बड़ी दावत होने वाली थी। सभी, आकाश और सुमित, तो विला में पहुंच चुके थे। चारों तरफ अच्छी चहल पहल थी। ध्रुव और आहान भी काफी अच्छे से तैयार हुए थे और दादाजी तो बेसब्री से आस्था के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं टाइगर अरमान के साथ सिंघानिया मेंशन में था। हालांकि आकाश के विला की दूरी बहुत ही कम थी, लेकिन जैसे ही अरमान तैयार होकर सूट बूट पहनकर वहां आया और टाइगर ने अरमान को देखा तो वो चौंक गया। तभी टाइगर अरमान के पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, किंग, हम कहीं जा रहे हैं। तभी अरमान ने सपाट लहजे में कहा, आकाश के विला, चलो। इतना बोलकर अरमान जाकर कार में बैठ गया। वहीं टाइगर कन्फ्यूज हो गया था कि जब किंग ने मना कर दिया था कि वो पार्टी में नहीं जाएंगे तो अचानक से उन्होंने अपना डिसीजन क्यों बदल लिया, क्योंकि आज तक टाइगर ने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि अरमान को अपना डिसीजन बदलना पड़े। आज पहली बार अरमान वो काम कर रहा था जिसे वो मना कर चुका था। तो टाइगर पूरी तरह से हैरान था और सोच रहा था, ऐसी क्या मजबूरी है या फिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से किंग ने अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गए हैं। टाइगर को ये नहीं पता था कि आस्था पार्टी में आने वाली है, क्योंकि जिस वक्त ध्रुव ने ये बोला था कि आस्था को भी पार्टी में इनवाइट किया गया था, उस वक्त आहान ने आस्था के बारे में ये बताया था कि पार्टी में आस्था आने वाली है। तब टाइगर कुछ जरूरी कॉल करने बाहर चला गया था। 10 से 15 मिनट की दूरी तय करने के बाद अरमान जल्दी ही आकाश के विला में पहुंच गया था। और अरमान वहां जैसे ही गया, वहां का माहौल एकदम बदल चुका था। एक खतरनाक और रहस्यमय सा माहौल अरमान में से आया करता था। वहीं आहान ने मलिष्का के साथ साथ टीना और कितने सारे ग्रुप की लड़कियों को वहां बुलाया था ताकि वो पार्टी में मौज मस्ती कर सकें। वैसे भी आहान को तो बहाना चाहिए होता था अपने कॉलेज की सभी हॉट लड़कियों को पार्टी में बुलाने का, ताकि वो उन सबके बीच में अपना एक आकर्षण बना सकें। इसलिए जल्दी ही कितनी सारी लड़कियां उस वक्त वहां पार्टी में मौजूद थीं। और जैसे ही उन सबकी नजरें अरमान सिंघानिया पर पड़ी, जो थोड़ी देर पहले वो आहान और ध्रुव के आसपास मंडरा रही थी, वो सब अब एक एक करके अरमान सिंघानिया की ओर देखने लगी थी।